ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। तो हम सभी ने आज की मुरली सुनी, सभी मुरली सुनते हैं ना? सुनते हैं सभी? देखो, पहली बात तो मुरली, अगर हम पूछते हैं मुरली सुनी, तो सामने वाला कहेगा हाँ हमने सुनी, लेकिन सुनने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? धारण करना। बहुत बहुत बढ़िया। कई बार हम बोलते हैं ना कि इसको हम कितना भी बोलते हैं लेकिन ये सुनता ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना माँ अपने बच्चे को, कितना हम इसको बोलते हैं, रोज रोज बोलते हैं लेकिन ये सुनता ही नहीं है। तो कब बोला माँ ने अपने बच्चे को? जब उस बच्चे ने किया नहीं। उसी प्रकार हम रोज मुरली सुनते हैं लेकिन करते नहीं है, तो बाबा तो नहीं कहेगा कि है ना ये मेरा सुनता नहीं है। लेकिन हम अपने आप से पूछे, क्या हमने मुरली सुनी? अगर हमने किया नहीं तो रोज की मुरली से हमें संकल्प ले लेना चाहिए कि जो आज बाबा ने कहा वो हमें करना ही है। ठीक है, तो अब क्या करना है? रोज मुरली सुननी है। सुननी माना करना है। तो आज बाबा ने क्या कहा? तुम कौन से संप्रदाय के हो? ईश्वरीय संप्रदाय के। और कौन मिला है? बहुत सुंदर, ज्ञान सूर्य बाबा। और तुम जगे हो और दूसरों को भी जगाना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुरली सुन करके उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना। मैं आपको बताऊं, अगर आप, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो मैं खुद करता हूं, आपको सारा दिन मुरली भूल नहीं सकती। कई बार हम कहते हैं, सामने वाला अचानक कुछ पूछता है आज बाबा ने क्या कहा, और हमें याद भी रहता है, फिर उसको हम कहते जरा भी अंदर है लेकिन थोड़ा सा हिंट दे दो, हाँ अभी भी है ना मैं भूल रहा हूं। अच्छा, वो एक शब्द बताता है और पूरा का पूरा इमर्ज हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों हम हिंट, जबकि सुना है, याद भी है लेकिन निकल नहीं रहा है, उससे हम हिंट लेना चाहते हैं? कारण क्या है कि हम मुरली सुनते तो हैं लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं करते। चिंतन करना जरूरी है। मुरली के चार स्टेप याद रखना। एक है मुरली सुनना, सुनने का तो मतलब समझ गए। दूसरा है मुरली समाना, सुनने के बाद माना हम समाएंगे कब? जब उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, है ना, तब वो हमारे अंदर समाएगा। और फिर मुरली सुनाना, जब हमारे अंदर है तभी हम दूसरों को सुना सकते हैं। जब हमारे अंदर ही नहीं है तो दूसरों को क्या सुनाएंगे? हाँ, जब हम ही खाली हैं तो दूसरों को क्या देंगे? और तीसरा है स्वरूप में, तो जब हमारे अंदर समा जाएगा फिर वो हमारे स्वरूप से दिखाई पड़ेगा। तो नेक्स्ट है स्वरूप में लाना। सुनना, समाना, सुनाना, स्वरूप में लाना। तो बाबा ने कहा जगाना है, अब इसके ऊपर चिंतन करो। देखो, बाबा ने हमारी बुद्धि का आंख खोला, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, हमें जगाया। किस लिए बाबा ने हमें जगाया है? हाँ, इसलिए नहीं जगाया कि बस मेरा कल्याण तो हो गया, बाकी किसी से क्या लेना देना। हमें दूसरों को भी जगाना है, है ना? लेकिन हम देखे, हम खुद जगे हैं, बाबा ने तो हमें जगाया है, लेकिन कई बार माया हमें जगे हुए को भी कब कब सुला देती है। अनुभव होगा ना? हंस रहे हैं। देखो, अमृत वेले हम बैठते हैं, ऐसे उठ के तो आ जाते हैं, या उठने के समय भी माया बड़े प्यार से जग जाते हैं। बाबा अपना काम कर देता, वो जगा देता है, लेकिन माया कैसे सुला देती है? बड़े प्यार से, है ना, वो कुछ कहती है सुलाने के पहले कुछ कहती और ऐसे शब्द बोलती है कि वो शब्द सुनकर के हम सो जाते हैं। पता है बोल रहे हैं कुछ, क्या बोलती है? हाँ, माया बड़े प्यार से बोलेगी। हाँ, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगी कि सो जाओ, वो प्यार से बोलेगी, देखो तुम बाबा ने सहज राजयोगी बनाया है ना, तुम हठ योगी थोड़ी हो, शरीर को थोड़ी कष्ट देना है, बैलेंस बना करके चलना है, है ना, ऐसे ऐसे समझाएगी। अगर इस प्रकार की बातें आती है तो समझो ये माया हमें सुलाने के लिए। और अभी दूसरे भी तो सोए हैं और अभी तो चार तो बजा ही नहीं है ना, ऐसे ऐसे माया आपको बहुत प्यार से समझाएगी। अगर इस प्रकार के विचार आवे तो हमें क्या समझना है? उस सुलाने के लिए आ गई है। तो बड़े रॉयल संकल्पों से आती है। अच्छा चलो हम विजयी बन गए, नहीं नहीं, बाबा ने कहा है ना अमृत वेले उठना है, हमें किसी भी हालत में सोना नहीं है। देखो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, बाबा मम्मा समान बनना। हम हर बात में बाबा को देखें। क्या बाबा ने कभी अमृत वेला मिस किया क्या? नहीं मिस किया तो हम कहते हैं हमें बाप समान बनना, तो कैसे बाप समान बनेंगे अगर बाबा की पहली ही आज्ञा उल्लंघन होती रहेगी? तो हम ये अपने अंदर देखें। एक बार मनोहर दादी सुना रही थी कि ब्रह्मा बाबा को डॉक्टर ने दादियों को बोला कि स्वास्थ्य के अनुसार अभी बाबा को बोलो दो चार दिन रेस्ट करे। तो दादियां आई बाबा के पास और कहा बाबा आप दो चार दिन रेस्ट करिए, हम लोग अमृत वेले का योग कर लेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा डॉक्टर ने बोला है? कहा हाँ बाबा डॉक्टर ने खास बोला है, आप दो चार दिन रेस्ट करिए हम लोग योग कर लेंगे। तो बाबा ने कहा बच्ची ये जो जिस्मानी डॉक्टर है ये बोलता है अमृत वेला नहीं उठो, रूहानी डॉक्टर बोलता है अमृत वेला उठो, तो मैं किस डॉक्टर की बात मानूं? तो बच्चे भी तो पास करने में होशियार होते ना, तो दादी ने कहा बाबा आप तो रूहानी डॉक्टर की ही बात माने, दो दिन के लिए इसकी भी बात मान लें। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा अच्छा बच्ची सोचते हैं। लेकिन दूसरे दिन देखा तो बाबा रजाई वगैरह ओढ़ करके आ गए। तो ये चीज हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ नियम बना करके, सिद्धांत बना करके चलना चाहिए। और ऐसे चाहे अमृत वेले का योग हो, मुरली क्लास हो, कई बार हमें नींद ऐसा आ जाती है कि पता भी नहीं चलता कि हम योग कर रहे हैं या सो रहे हैं। दूसरा धक्का देगा तो उसको हम आंख दिखाएंगे, आपको पता नहीं है मैं साइलेंस का अनुभूति कर रहा हूं, है ना, उनको ये भी नहीं पता है कि हम सो गए। तो शून्य अवस्था जिसको बोलते हैं। तो जब हम जगे होंगे, माना कहने का जगना माना, जो मैंने चिंतन किया आज, जगना माना आत्मिक स्थिति में रहना। अगर हम देह भान में आते हैं तो वास्तव में देखो सारी दुनिया क्या है, बाबा कहते सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में भटक रही है। क्यों? अज्ञान अंधकार में सोए पड़े हैं। जगे तो हैं लेकिन अज्ञान अंधकार में सोए, माना ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? माना अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जब हम देह भान में हैं तो वास्तव में हम सोए हुए हैं। अब हम अपनी दिनचर्या में देख लें, हम सारा दिन कितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अर्थात कितना समय हमारी जागृत अवस्था रहती है। देखो बाबा ने कहा है आप मुरली के पॉइंट सोचो तो मुरली क्या कहती और हम कहां पर हैं। बाबा ने कहा है जब तुम आत्मिक स्थिति में रहते हो उतना समय ही तुम विकर्मों से मुक्त हो। माना हम देह भान में हैं तो विकर्म हम कुछ भी कर रहे हैं, देह भान में शरीर के भान में आना, अपने को आत्मा ना समझना, माना विकर्म चालू है। और जितना समय हम आत्मिक स्थिति में हैं उतना समय ही हम विकर्मों से मुक्त हैं। अभी आप सोचो एक तरफ 63 जन्मों का विकर्म विनाश करना, दूसरे तरफ 21 जन्मों का भाग्य बनाना, और अगर फिर भी छोटी मोटी गलतियां होती रहे, भूले होती रहे, देह भान बस, तो हम कब विकर्म विनाश करेंगे, कब हम 21 जन्मों का भाग्य बनाएंगे। बहुत सोचने की बात है। तो बाबा ने जगाया है, हाँ, खुद भी जगना और दूसरों को जगाना, माया सुलाना दे, हाँ, इस बात के ऊपर अटेंशन। फिर आगे प्रश्न में बाबा ने क्या बोला, टकराव में आने का कारण और निवारण क्या है, देह अभिमान। जब देह अभिमान आता है तो फिर कौन सी ग्रहचारी बैठ जाती है, माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। फिर बाबा ने इससे मुक्त होने की विधि क्या बताई, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लगे रहो, याद की यात्रा पर रहो, तो माया के अनेक प्रकार की ग्रहचारी से बच जाएंगे। तो देही, अच्छा, एक है देही अभिमानी अवस्था, एक है आत्म अभिमानी अवस्था, आप क्या समझते हैं? देखो मुरली में बाबा बहुत स्पष्ट बोलते हैं, रोज मुरली में बाबा बार बार, बच्चे देही अभिमानी बनकर के रहो। देही अभिमानी अवस्था अर्थात जिसमें देह और देही की अलग अलग स्मृति, हमें पूरी तरह से, जैसे मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं, मुख द्वारा बोल रही हूं, शरीर रूपी गाड़ी को चला रही हूं, मैं आत्मा आत्मा भाई को देख रही हूं, मैं आत्मा आत्मा भाई से बात कर रही हूं, माना हमारा, हमें पूरी कॉन्शियस है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं, ये देही अर्थात आत्मा, देह अर्थात शरीर, तो दोनों की अलग अलग स्मृतियां। और फिर इसके ऊपर वाला स्टेप आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित रहे, आत्मा के सातों गुण हमारे स्वरूप से दिखाई पड़ने लगे, हमारे कर्म से दिखाई पड़ने लगे, हमारे व्यवहार से दिखाई पड़ने लगे, तो ये अलग अलग स्थितियां हैं। तो मैं एक बात कह रहा था कि मुरली की पॉइंट आपको याद रहे, तो आजकल मैं क्या करता हूं, रोज की मुरली से 7 बातें, और ये मैंने कब चालू किया, जब एक बार दादी कर रही थी कि आप लोग तो मीठे बच्चे, धारणा सार सब बना बनाया नोट कर लिए, हाँ, कहा लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते थे, तो हम लोगों ने पूछा दादी आप कैसे लिखते थे, आप बताएं उसी अनुसार हम भी लिखें। तो दादी कहती हम 4 डायरी बनाते थे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान की पॉइंट ज्ञान की डायरी में, योग की पॉइंट योग की डायरी में, सेवा की पॉइंट सेवा। और तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मन में आया कि दादी देखो कैसी है? इनके पास तो ज्ञान का, योग का, धारणा का, फिर तो स्टॉक है ना, अलग अलग डायरियां। तो हमने यही बात को ध्यान में रखते हुए रोज की मुरली से 7 बातें, देखो एक होता है हमने सुना और लिख लिया, एक होता है मेहनत करके खुद निकालना। मीठे बच्चे धारणा साहब लिख रहे हो वो मना नहीं करता, वो भी बहुत अच्छा है, लिखना चाहिए, लेकिन हम क्या मेहनत करते हैं, जो हम मेहनत करके निकालेंगे अंदर से, हाँ, तो क्योंकि हम एकाग्रता पूर्वक मुरली सुना है, मेहनत की है, तभी वो पॉइंट निकला है, तो वो हमारा अपना बन जाता है, फिर वो नहीं भूल सकता। तो रोज की मुरली से हम 7 बातें निकालते हैं, और हम केवल ये नहीं कि हाँ भाई 7 बातें निकालना है, लेकिन ये है कि जो 7 बातें हमने निकाला है उसको हम चार्ट के तरीके से चेक करते हैं। तो मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं जो आपके जीवन में काम आए। पहली बात, रोज की मुरली में ऐसा कोई ना कोई बात होता जो आपके उमंग उत्साह को, जो आपके खुशी को बढ़ा दे, बढ़ा देता है ना, कोई ऐसा नया पॉइंट आपको मिलता है, हेडिंग डालो ईश्वरीय महावाक्य, उसके नीचे लिख दो जो आपके है ना अंदर आपको लग जाए जो पॉइंट, ईश्वरीय महावाक्य। पहला सूत्र ईश्वरीय महावाक्य। दूसरा सूत्र, रोज की मुरली से मना स्वमान। अच्छा, आप स्वमान निकालेंगे, 50 स्वमान निकलेंगे रोज की मुरली से, लेकिन उसमें नहीं जाना है, एक लिखना है, वही लिखना है जो सारे दिन में हमें रहना है। हम कोई केवल लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि वो सारे दिन में वो चीज हमें करना है। तो वो समान लिखें, एक चाहे आप वरदान से, स्लोगन से, मुरली के बीच से, कहीं से भी एक, लेकिन वो सारे दिन में उस समान में रहें। तो दूसरा सूत्र, आज की मुरली से समान। तीसरा सूत्र, आज की मुरली से योगाभ्यास। योग के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा। कई बार हम कहते हैं ना, क्या करें, बोर हो जाते हैं वही है। बाबा कहते, बच्चे इतने मैं विधियां बताता हूं, इतना ये कोई बोर करने वाली है योग अभ्यास नहीं है, आनंद दिलाने वाली। इस योग अभ्यास में इतना सुख है जो बाबा कहते, तीनों लोकों का भी राज्य दे दिया जाए तो भी फीका लगेगा, इतना आनंद है, इतना सुख है। तो आप रोज रोज नए नए तरीके से योग करो ना। रोज बाबा भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां बताते हैं, तो उस विधि से मैं तो करता हूं, मैं खुद करता हूं। खास करके जो मुरली में योग अभ्यास नोट करता हूं, तो शाम को जब मैं योग में बैठता हूं ना, तो मैं खास करके सोचता हूं आज बाबा ने योग के बारे में क्या बताया, और उस तरीके से योग देखो कितना आपको अच्छा लगेगा। तो तीसरा है, आज की मुरली से योगाभ्यास। चौथा, आज की मुरली से धारणा। धारणा के संदर्भ में क्या कहा। बहुत बातें निकलेगी, लेकिन आपको लिखना है एक, और वो जो लिखोगे वो करोगे, है ना। तो गांठ बांध ले, व्रत ले ले, आज बाबा ने ये कहा है तो ये हमें करना ही है। कितनी बातें हो गई, चार। पांचवी बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और ये खास करके जब मैं कहीं बाहर जाता हूं, विशेष करके योग भट्टी आदि कराने, तो टीचर्स बहनों को ये बात में खास, ये तो सबके लिए है, लेकिन मैं टीचर्स बहनों को ये खास ये बात बोलता हूं कि और कुछ भी त्याग करना पड़ जाए, भोजन त्याग करना पड़ जाए एक टाइम त्याग कर दो, नींद त्याग करना पड़ जाए एक टाइम कर दो, लेकिन ये चीज ना छोड़ो, और वो है रोज की मुरली से चिंतन। चिंतन अपनी डायरी बना लेना। अच्छा, हम सोचते हैं करेंगे लिखेंगे, लेकिन हम आदत नहीं डालते, करते नहीं है। और ये चीज जिसने आदत डाल दी ना, जिस बात के ऊपर हमने चिंतन करके नोट किया है, वो चीज हमारा अपना बन जाता है, जीवन में कभी भूल नहीं सकता, वही समय पर काम आता है। सुनी सुनाई बातें भूल जाएगी, लेकिन जो आपने खुद चिंतन करके नोट किया है वो कभी नहीं भूल सकती। और आप देखेंगे, आपको सुनाने की इच्छा करेगी, मैं दूसरों को सुनाऊं, आपका योग बहुत अच्छा लग जाएगा। तो पांचवी बात, आज की मुरली से चिंतन। छठी बात, आज की मुरली से सेवा के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा, है ना। और सातवीं बात, आज की मुरली से स्व चेकिंग। उपरोक्त छह बातों को चार्ट के तरीके से बना करके, हाँ चार्ट, बाबा कहते बच्चे चार्ट लिखो, हम कहते हैं हाँ ना, हम एक मास लिखते हैं और रख देते हैं, वही रोज हाँ ना लिखते लिखते हम थक जाते हैं। इस तरीके से आप चार्ट बनाओ, रोज की मुरली से आपका चार्ट, इतना आनंद आएगा, इतना सुख मिलेगा कि बात मत पूछो। रोज की मुरली भी याद रहेगी और योग बिल्कुल सहज हो जाएगा और चार्ट की चेकिंग हो जाएगी। तो सातों बात याद रही, पहला आज की मुरली से ईश्वरीय महावाक्य, हाँ उसमें जो आपके उमंग उत्साह को बढ़ाए, खुशी को बढ़ाए, जो आपके बात आपको लग जाए। दूसरा स्वमान, तीसरा योग अभ्यास, चौथा धारणा, पांचवा चिंतन, छठा सेवा, सातवां स्वचेकिंग। और एक बात और है, अगर आप करना चाहो, रोज बाबा हमें कुछ ना कुछ स्मृतियां दिलाते हैं। जैसे बाबा कहते बच्चे, अब 84 जन्मों का ड्रामा पूरा हुआ, अब घर जाना है ना, कुछ ना कुछ स्मृति, बच्चे तुम देवता याद आता है, तुम देवता बनने वाली। तो इस प्रकार से हम अगर पॉइंट नोट करेंगे फिर देखो भूलेगा क्या, करके देखना, भूल नहीं सकता कभी। अच्छा आगे बढ़ो, और आगे बाबा ने क्या कहा धारणा सार में, भारत में सुख शांति स्थापन करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में क्या करना है, सेमिनार करना है। तो भारत में सुख शांति था, स्वर्ग था। हाँ हम कहते हैं ना भाई हमें स्वर्ग में जाना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो वहां के जीवन की क्या विशेषता, हाँ जैसे बाबा ने आज कहा सुख शांति, तो हम देखें वो हमारे जीवन में आज है, वो हमारे संस्कारों में है। वहां की विशेषता थी कि वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक। तो वो चीज ऐसे नहीं कि वहां जाकर बनेंगे, हमें वो आज अनुभव करना है अपने जीवन में, तब हम वहां जाकर के, है ना, हमारे अंदर वो संस्कार तो आज लाना है ना, मैं ऐसा बना हूं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अच्छा सर्वगुण संपन्न, अब हम इस बात पर चिंतन करते हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है ये बनना, तो क्या हम ये अभी वर्तमान समय ये अनुभव कर रहा हूं सर्वगुण संपन्न बनना है, तो गुण कैसे आएंगे देवताओं जैसे गुण कैसे आएंगे? बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा जिसके अंदर सम्मान देने की विशेषता होती है उसके अंदर सर्वगुण आ जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा सम्मान देने में मेरे बच्चे बिजनेसमैन बन जाते हैं। बिजनेसमैन का मतलब वो दे तो मैं दूं, उसने नहीं दिया तो मैं क्यों दूं, मैं उससे छोटा हूं क्या? अच्छा कोई भी, और कोई तो उस भिखारी बन जाते हैं, मना सब दे, सबको देना चाहिए लेकिन मुझे। लेकिन बाबा ने विधि क्या बताई, सम्मान देना ही वास्तव में सम्मान लेना है। तो बाबा ने कहा जिसके अंदर सम्मान देने की विशेषता है उसके अंदर सारे, और जब हमारी गुणग्राही दृष्टि होगी है ना, जो कुछ हम सामने वाले में देखते हैं वही चीज हमारे अंदर आने लगता है। गुण विशेषता देखेंगे तो गुण विशेषता, अवगुण देखेंगे तो, अब हम ज्यादा क्या देखते हैं क्या देखते हैं? हाँ, अभी ये तो खैर अब खुद ही हम समझ लें कि हम ज्यादा क्या देखते हैं, किसी के गुण विशेषता में नजर जाती है। तो बाबा ने कहा अगर किसी को देखने की आदत है तो गुण विशेषता देखो। मुझे एक मुरली याद आ रही है 16/11/95 ओम शांति भवन में बाबा की मुरली चली, मेरे सामने मुरली चली थी, वो पॉइंट मैं आज कभी भी भूलती नहीं है। बाबा ने बड़े रहस्य की बात बताई उसमें, जब हम हमारी दृष्टि जब दूसरों के ऊपर जाने लगती है, हम दूसरों की कमी देखने लगते हैं, तो बाबा ने उसमें कहा बच्चे कभी भी दूसरों को नहीं देखना। अच्छा हम देखते किसको हैं, अपने से जो बड़े होते हैं उनके ऊपर नजर जाती है, फिर हम क्या सोचते हैं, अरे मैंने तो सोचा था ये बहुत ज्ञानी योगी तपस्वी इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, ये भी इसके अंदर भी ये संस्कार है, ये भी ऐसा करता है, ये भी गुस्सा करता है आदि आदि। तो बाबा ने क्या बात बताई कि बच्चे भले तुमने वर्तमान में ऐसे कोई छोटा मोटा संस्कार आपने देखा, वो माया अभी तो कोई पुरुषार्थ मना संपन्न संपूर्ण तो नहीं बने है ना, पुरुषार्थी है, कभी भी किसी के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस आ जाती। तो बाबा ने ये कहा कि उसने जो त्याग तपस्या सेवा, ऐसे तो नहीं महारथी बन गया ना, ऐसे तो नहीं बड़ा हो गया ना, उसने जो जमा किया है अपने जीवन में उस जमा के आधार से वो पास हो जाएगा। और आप अभी नए नए आए हैं, किसी की कमी कमजोरी देखा और ये अरे मैं तो अभी नया नया हूं ना, पुरुषार्थी हूं ना, बड़ों बड़ों को तो मैंने देख लिया कौन कितने पानी में है, मैंने कर लिया तो थोड़ा क्या बड़ी बात। तो बाबा ने कहा तुम फेल हो जाएंगे, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसलिए बाबा ने कहा दूसरे को देखने की आदत, और बाबा ने कहा अगर तुम्हारी आदत पड़ी है तो मैं बैठा हूं ना, मुझे क्यों नहीं देखते है ना, अब मुझे क्यों नहीं देखते, जो सर्वगुण संपन्न बैठा हुआ है, जो संपन्न और संपूर्ण बन गया है और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, तो हम उसको क्यों नहीं देखते। तो ये करना है, ठीक है ना। तो सर्वगुण संपन्न बनना है तो गुणग्राही दृष्टि, एक बाबा को देखना है, सम्मान देने की भावना और पवित्रता। बाबा ने कहा ना पवित्रता सर्वगुणों की जननी है, जहां माँ है वहां बच्चे। अच्छा आगे चलते हैं। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण। सोलह कला संपूर्ण का मतलब कई बार है ना हमारे अंदर ये भी, हाँ ये विशेषता होना चाहिए, सोलह हम गिनती करा देते बस सोलह कला संपूर्ण हम बन गए। सोलह कला संपूर्ण माना कोई सोलह गुण या विशेषता की बात नहीं होती, सोलह कला संपूर्ण का मतलब ये होता है आत्मा 100% चार्ज, संपूर्ण शक्तिशाली, जिसके अंदर सर्वगुण विशेषता आ जाए, पावरफुल शक्तिशाली आत्मा। तो ये अच्छा संपूर्ण निर्विकारी। आगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी विकार का अंश भी ना हो। बाबा ने कहा है अगर किसी भी विकार का अंश भी है तो क्या होगा रिजल्ट में, वंश पैदा हो जाएगा। हाँ, कई बार हम कहते हैं ना अरे तो छोटी सी बात है, ठीक हो जाएगा, कर लेंगे। तो बाबा ने कहा वही कमी आपको धोखा देगी, जिसको आप छोटी बात कर रहे हैं ना मैं ठीक कर लूंगा, अपने आप को चला रहे हैं। तो बाबा ने कहा अंत में हाय मेरा भाग्य कहकर के चिल्लाएंगे, वही बात आपको धोखा देगी। तो कभी भी अपने को चलाना नहीं है, ठीक है। अच्छा और आगे संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन बनेंगे, जो सारा दिन श्रीमत मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे। बाबा ने हर कर्म की मर्यादाएं दी है, हर कर्म की श्रीमत दी है 31/12/70 की अव्यक्त मुरली है, 31 दिसंबर 1970। अमृत वेले आंख खुलने से लेकर रात्रि सोने तक बाबा ने हर कर्म की श्रीमत बताई है। अगर हम वो अव्यक्त मुरली आप पढ़ लो, दो चार बार अच्छे से पढ़ लो और देखो कि इस अनुसार हमारी दिनचर्या है। अगर हमारी दिनचर्या श्रीमत अनुसार होगी हाँ तो हमारा योग सहज हो जाएगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम माना सारा दिन श्रीमत मर्यादा पर चलने वाले, और फिर डबल अहिंसक है ना, ना तन की ना मन की कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं। तब हम ये बातें होंगी तब हम समझो सत्युगी नई दुनिया की स्थापना में हम बाबा के मददगार हैं। देखो बाबा जब परम धाम से चले तो बाबा की दृष्टि किसके ऊपर पड़ी, सन्नाटा छा गए तो क्या सोच रहे हैं, आपके ऊपर पड़ी ना। बाबा ने आपको चुना और बाबा ने आपको राइट हैंड बनाया। सारे संसार की करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने आपको चुना है, भगवान ने आपको पसंद किया है, भगवान ने आप पर विश्वास किया है कि यही हमारे सत्युगी दुनिया की स्थापना में मेरे मददगार बनेंगे। किया है कि नहीं, हाँ या ना। तो बाबा ने हमें पसंद किया, बड़े बड़े धर्म नेता, राजनेता, अभिनेता, साइंटिस्ट उसको पसंद आए नहीं आए, हमें पसंद किया, हमें चुना है। तो हम देखें हम उसके आशाओं को पूर्ण करने वाले बने हैं, उसके विश्वास को हम पूरा कर रहे हैं, विश्वासघात तो नहीं कर रहे हैं। उसने हमें चुन तो लिया है ना, और हम बस चलो हमारा कल्याण हो गया है, बाकी दुनिया का क्या लेना देना नहीं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जब बाबा ने हमें चुना, पसंद किया, अपना राइट हैंड बनाया, तो दूसरों की सेवा करना। फिर आगे आगे और बाबा ने क्या कहा, सर्विस में उन्नति पाने के लिए और सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए क्या बन करके रहना है, देही अभिमानी बन करके रहना है, विचार सागर मंथन करना है। आप कई बार, कई लोग कहते हैं कि विचार सागर मंथन कैसे करें, मेरा मंथन चलता ही नहीं है। है कई कोई ऐसे जिनका मंथन नहीं चलता हो ज्ञान के पॉइंट पर? देखो, सबके अंदर विशेषता है, चिंतन करने की, मंथन करने की सबके अंदर विशेषता है, है ना? और सब करते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव बातों का मंथन करने के बजाय नेगेटिव बातों का मंथन कर लेते, बस इतना फर्क है। देखो, अभी आज आपको बाबा ने वरदान में कितना सुंदर वरदान दिया। आज का वरदान क्या था? सच्चे त्यागी भगवान। रोज हमें बाबा सुंदर सुंदर कि तुम परम पवित्र आत्मा हो, तुम महावीर आत्मा हो, तुम दिल तक नशीन आत्मा हो, तुम जहान के नूर हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो, हम रोज सुनते हैं। अच्छा, और उसको हम याद भी करते हैं, उसके नशे में भी रहते हैं, अचानक कोई पूछता है तो खाली हो जाता है। जहान के नूर, दिल तक नसीन, नैनों के नूर, वो सब बात भूल जाती है। सुबह सुना, दोपहर में भूल गया। और कोई चार लोगों के बीच में अगर आपको पागल बोल दे तो बिल्कुल मूर्ख आदमी है, पागल है, तो वो वो भूलता है। उसको हम, उसके ऊपर हम कितना चिंतन, चार लोगों के बीच में मुझे बोला, मैं ऐसा दिखता हूं क्या? ठीक है, बदला लेने के लिए हम तैयार हो, ईंट का जवाब पत्थर से देना चालू। और महीनों बीत जाता है, सालों बीत जाता है, लेकिन वो शब्द नहीं निकलता, अंदर से नहीं निकल रहा है। पूरा जीवन बीत जाता है तो भी कहते हैं मुझे आज तक याद है, बचपन में इसी ने बोला था, चार लोगों के बीच में हमारी इंसल्ट की थी। आप देखिए, निगेटिव बात जो हमें भूलना चाहिए वो अंदर में समा रही है, पॉजिटिव बात, अच्छी बात, स्वमान की बात, भगवान की बात, वो निकल जा रहा है। तो जरूरी क्या है? बहुत जरूरी है अंदर की सफाई की, स्वच्छता की। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा वरदान में, आज का वरदान? अभी तो बताया था आपने, श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा त्याग में भाग का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भाव। तो ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ स्थिति कहो, सच्चे ब्राह्मण कहो, क्या निशानी बाबा ने बताई? किसे कहेंगे सच्चे ब्राह्मण? हाँ, पवित्रता। और पवित्रता के लिए क्या बताया? हाँ, सहन भी करना पड़े, त्याग भी करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े। हाँ, चार बातें। तो खुशी खुशी से, मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी से त्याग कर दो। लेकिन ये जो पवित्रता की धारणा है, देखो बाबा ने कितने सुंदर सुंदर बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। आप सोचिए कितना बड़ा महत्व बाबा ने बताया। अगर किसी का श्वास ही बंद हो जाए तो कितने देर तक वो जीवित रहेगा? अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं तो समझो हमारा ब्राह्मण जीवन, जो ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है वो श्वास ही बंद हो गया। ब्राह्मण जीवन नहीं, वो शूद्र के समान जीवन। ब्राह्मण जीवन की नवीनता ही पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता ही पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन की महानता ही पवित्रता है। एक बार गुलजार दादी ज्ञान सरोवर निवासियों का क्लास करा रही थी, तो उसमें दादी ने कहा कि जो और अलग अलग संस्था वाले मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि दादी जी आपका ज्ञान बहुत महान है। परमात्मा आकर के ज्ञान देता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। बहुत महान, बहुत ऊंचा ज्ञान है, लेकिन पवित्रता के कारण लोग थोड़ा पीछे हटते हैं। अगर ये बात आप छोड़ दो ना, तो सारी दुनिया की सारी संस्थाएं टूटकर आप में मिल जाएगी। तो दादी ने क्या कहा होगा, मुझे करोड़ों की संख्या नहीं दिखानी है, मुझे तो चाहिए ही बाबा के पवित्र प्योर बच्चे, क्योंकि पवित्र दुनिया आने वाली है, तो पवित्र दुनिया में वही जाएंगे जो जिनके जीवन में पवित्रता होगी, है ना। तो हम देखें, जिसके लिए बाबा यज्ञ इतिहास को जब हम उठा करके देखते हैं, कितनी समस्याएं, परिस्थिति, बाबा के सामने बाबा को कितना सहन करना पड़ा, तो उस बात में हमें अपने आप को चलाना नहीं है। तो एक अव्यक्त मुरली जगह जगह वो प्रिंट आउट उसको लगा दिया, उसमें बाबा ने कितना कहा कि अगर इस बात में पवित्रता के मार्ग में, चाहे मधुबन निवासी हो, सेंटर निवासी हो, गीता पाठशाला हो, गृहस्थी हो, कोई भी बीके हो, बाबा ने कहा दोनों कान खोल करके सुन लेना, इसमें किसी को भी रियायत नहीं है। उसको बाबा बाप के रूप में नहीं, लेकिन धर्मराज के रूप में। कितना, तो हम देखें कि इस बात में कई बार आप साकार मूल्य में ये शब्द सुनते हैं कि ये बूढ़ा बाप, बूढ़े बाप के दाढ़ी की लाज रखो। वो क्या कर रहा है, पवित्रता की भीख मांग रहा है तुमसे, तुम एक जन्म अपने जीवन को पवित्र बनाओगे, ये थोड़ा सा समय, तो बाबा तुम्हें पवित्र दुनिया में स्वर्ग का राज भाग देगा, तुम्हारे सिर के ऊपर ताज रखेगा। तो हम देखें, इतना है हमारे जीवन में पवित्रता का महत्व। और ये पवित्रता भी हमारे जीवन में आती आत्मिक स्थिति के आधार से। एक अव्यक्त मुरली में पढ़ रहा था, तो बाबा ने उसमें कहा कि देखो, एक हैं अष्ट रतन, एक हैं 108, दूसरे हैं 16,108, तीसरे हैं 9,00,000। आप किस में आना चाहेंगे, किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं है, अष्ट रतन, 108, 16,108, 9,00,000, किस में आना चाहेंगे, शर्माते। एक बार ब्रजभवन भाई क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने कहा, हम पूछते भाई श्री लक्ष्मी श्री नारायण कौन बनेंगे, जरा हाथ खड़ा करें। तो कहा लोग जो है ना, पहले तुम मुस्कुराते हैं, फिर आप बाजू में देखते हैं, हाथ खड़ा करते करते बाजू में भी देखते हैं कि मैं ही खड़ा कर रहा हूं या दूसरे भी कर रहे हैं, है ना। तो हमारे जीवन का ये लक्ष्य है, तो हमें अभी मुझे एक बात याद आई, एक बार देखो जो जैसी आत्मा होती ना ऊंची फर्स्ट क्लास, एक बार बड़ी दादी मधुबन निवासियों का क्लास करा रही थी, तो आते ही दादी ने एक प्रश्न पूछा, जो मधुबन निवासी माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बन गए हैं, वो हाथ खड़ा करें। अब कौन हाथ खड़ा करेगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अगर कोई हाथ खड़ा करे तो सामने वाला अच्छा ठीक है, अभी क्लास से बाहर निकलते ही हम परीक्षा ले लेंगे, ये भी है। लेकिन दादी तो वो संपन्न संपूर्ण स्टेज वाली आत्मा, तो दादी अब थोड़ा सा इस बात को और गंभीरता से ले ली, अरे कोई नहीं हाथ, तुम नहीं बने हो तो कौन बनेगा। अच्छा, फिर सीलू बहन आगे बैठी थी, सीलू बहन ने हाथ खड़ा किया, सीलू बहन को देख करके और दो चार लोग, 10 लोग 20 लोग, ना एक दो भाई कोई है हाथ खड़ा करने वाले। तो देखो जो जैसी ऊंची आत्मा होती है उनके बोल भी ऐसे होते हैं। तो आप देखें कि हमारे जीवन में कहां तक, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, बाबा कहते तुम्हारे जीवन का स्वधर्म का स्वरूप, स्वधर्म कहो, स्वरूप कहो, स्वदेश कहो, स्वलक्ष्य कहो, वो क्या है, पवित्रता। तो इस बात में हम अपने, अभी जो बाबा की अव्यक्त मुरली चली, इसके एक अव्यक्त मुरली पीछे चली थी ना, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। अच्छा, मैं वो बता रहा था कि एक अष्ट रत्न 108, 16108, तो बाबा ने कहा कौन किस में आता उसकी निशानी बाबा ने बताया था। तो जैसे अभी हम पूछे कि अष्ट रत्न में कौन आए, और आप एक दूसरे को देखने लगे कि भाई मैं ही हाथ खड़ा कर रहा हूं यार। तो सुनो, अब इससे आप पता कर लेना, बाबा ने कहा कि जो अष्ट रत्न वाली आत्माएं होती हैं, वो अपने पूरे शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती हैं। और पूरे शरीर के ऊपर किसने विजय प्राप्त किया, जो आत्मिक स्थिति में रहती हैं। आत्मिक स्थिति के आधार से हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता आती है, और संपूर्ण पवित्रता के आधार से हम हर कर्मेंद्रियों को पावन बना देते हैं। हर कर्मेंद्रियां हमारी कमल समान बन जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, लेकिन फाउंडेशन में क्या है, पवित्रता, और उसका भी आत्मिक स्थिति। इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा, कई बच्चे कहते हैं कि मैं क्या पुरुषार्थ करूं, ये करूं तो वो छूटता, वो करूं तो वो छूटता है, ऐसा क्या है कि कौन सा पुरुषार्थ है जिसमें सारा पुरुषार्थ समाया हुआ। तो बाबा ने उसमें यही कहा कि जो बच्चे आत्म अवमानी स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करते हैं, इसमें सारा पुरुषार्थ समाया हुआ है। एक बार गुलजार दादी क्लास करा रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखो आजकल तो तुम आत्मा समझने की कोशिश करते हो, कहा लेकिन हम लोग आत्मा समझने की कोशिश नहीं करते थे, कहा हम बन ही गए थे आत्मा, हमारी नेचुरल दृष्टि वृत्ति, चार चार छह छह घंटा हम आत्मा बनकर के बैठ जाते थे, तो वो स्थिति उनकी इतनी ऊंचाई स्थिति। इसलिए हम बाबा मम्मा के जब कहानियां सुनते तो क्या सुनते कि बाबा के सामने कोई भी जाता था, बिल्कुल जिसको आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, लेकिन बाबा के सामने गया, बाबा की दृष्टि पड़ी और अशरीरी बन गया, तो क्या हुआ, बाबा की अपनी इतनी ऊंची स्थिति ऐसी थी कि सामने वाला शरीर से डिटैच हो जाता था। अच्छा, तो पवित्रता हमें हर प्रकार, चाहे मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, हर एक प्रकार की वो हमें अंदर से गहराई से चेकिंग करनी। लास्ट स्लोगन में बाबा ने क्या कहा, सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले ही मास्टर सर्व शक्तिवान हैं। तो कई बार हम कहते हैं बाबा ने तो कहा है ना सर्व शक्तियों को आर्डर करो, जैसे आर्डर करोगे तो वो शक्तियां हाजिर हो जाएगी। हा? बाबा कहते मुझे यूज करो, बाबा को हम आह्वान करते हैं, बाबा को यूज करेंगे तो बाबा मदद देंगे। तो कई बार बच्चे कहते हैं बाबा आप तो कहते हो कि मुझे यूज करो, मैं आकर आपको मदद दूंगा, शक्तियों को आह्वान करो तो शक्तियां आ जाएंगी। तो हमारे सामने विघ्न आई, समस्या आई, आपको मैंने बहुत बुलाया, बाबा आ जाओ, मैं पुकारता ही रहा, बुलाता ही रहा, और आप तो आए नहीं। बाबा ने मुरली में कहा कि कई बच्चे बाप दादा को उलाहना देते हैं कि बाबा मैंने खूब आपको याद किया, खूब बुलाया, बाबा आओ, हाँ ये समस्या आई है, परिस्थिति आई है, इसमें से निकालो, लेकिन आप तो आए नहीं, आपकी तो मदद मिली ही नहीं, और आप मुरली में कहते हो कि बुलाओ मुझे यूज करो, तो होगा, ऐसा हो सकता है। ओम शांति, ओम शांति। तो बात चल रही थी कि कई बच्चे कहते हैं कि हम बाबा को यूज तो करते हैं, शक्तियों को आह्वान करते हैं, लेकिन हमें बाबा की मदद मिलती नहीं, समय पर शक्तियां आती नहीं, ये हमारा कंप्लेन है बाबा के आगे। तो बाबा ने उस मुरली में कहा कि आप सब जानते हैं बाबा के कितने सुंदर महावाक्य हैं कि बच्चे बुलाए और बाप ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और फिर भी अगर मदद नहीं मिलती तो उसके तीन कारण हैं। अगर कोई को ये कहता है कि हम शक्तियों को आह्वान करते हैं, शक्तियां आती नहीं है, हमें बाबा की मदद का अनुभव होता नहीं है, तो बाबा ने कहा, बाप तुम मेरे बच्चे हो, मैं भक्ति मार्ग में भक्तों को मदद करता हूं और बच्चों को मदद ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी नहीं मिलता तो वो तीन कारण देखो। विधि से सिद्धि होती है तो पहला कारण, बाबा ने कहा बाबा की मदद कहो, शक्तियां को, मदद माना शक्ति, समय पर शक्ति आना उसकी, शक्तियां उसी के आगे हाजिर होती है जो स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, जो मालिक बन करके आर्डर करते हैं, स्वमान की सीट पर सेट हो करके फिर आर्डर करते हैं, शक्तियां उसी के आगे जी हजूर करती है। तो हम देखें, पहली बात, स्वमान की सीट पर सेट होकर के आर्डर करते हैं या साधारण रीति से आ जा सकती, तो मालिक का ही नौकर मानेगा ना बात। तो पहली बात, मालिक बनना, स्वमान की सीट पर सेट रहना। दूसरी बात, शक्ति उसी के आगे जी हाजिर करती है जो श्रीमत के आगे जी हजूर करते हैं। शक्ति, आप चाहते हो सारी शक्तियां मेरे आगे जी हजूर करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? श्रीमत के आगे जी हजूर करना पड़ेगा। हम कई बार कहते हैं, है ना, खास करके जो गृहस्थ में माताएं रहती हैं, माताएं कहते हैं, आजकल के बच्चे ना बात नहीं मानते, मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है। हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, हम उसकी कितना सुनते हैं? याद रख लो कि जितना हम बाबा की सुनेंगे उतना ही आपके बच्चे आपकी सुनेंगे, सारे लोग आपकी सुनेंगे। अगर आप बाबा की खूब सुनते हैं तो आपकी कोई बात कट कर ही नहीं सकता, सब लोग आपके आगे जी हजूर करेंगे। बस आपको काम है, आपका काम है एक के आगे जी हजूर करना, आप एक के आगे जी हजूर करो, सारे लोग आपके आगे जी हजूर करेंगे। तो जितना हम श्रीमत के आगे जी हजूर करते हैं उतना शक्तियां हमारे आगे जी हजूर करते। तो श्रीमत, रोज की मुरली, उसको हम कितना अपने जीवन में अपनाते हैं। तीसरी बात, बहुत गहरी बात, शक्तियां उसी के आगे हाजिर होती है जो अपने समय को पूरी तरह से सफल करते हैं। अगर हम अपने समय को बर्बाद करते हैं तो समय जैसे कि बदला लेती है कि तुमने मुझे बर्बाद किया है, जब तुम्हें शक्ति की बहुत जरूरत होगी उस समय हम शक्तियों को आने नहीं देंगे। ठीक है ना, पहला स्वमान की सीट पर सेट रहना, दूसरा श्रीमत के आगे जी हजूर करना, तीसरा समय को सफल। अगर ये तीन बातें हैं तो बाबा की मदद कहो, सफलता कहो, किसी भी क्षेत्र में शक्तियां ना आवे ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये तीनों बातें चेक करना कि जो संगम युग का समय है इसको मैं कहां तक सफल कर रहा हूं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा ने हमें बहुत बड़ा स्वमान दिया है कि मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में रहोगे तो सारी शक्तियां आपके अधीन रहेंगी, जिस शक्ति को आह्वान करोगे वही शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। सबसे बड़ा स्वमान है, बाबा ने कहा कि जब तुम मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में रहते हो तो सारे संसार की किसी भी मायावी शक्ति का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ नहीं सकता, किसी भी इविल शक्ति का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ नहीं सकता। मैं आपको एक प्रैक्टिकल घटना सुना देता हूं कि एक भाई ऐसे मंदिर पर एक प्रदर्शनी लगाए हुए था और वहां पर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक आ गया, तो उसने देखा प्रदर्शनी तो कहने लगा, ये क्या आत्मा परमात्मा का ज्ञान लगा रखा है, मेरे पास जो सिद्धि है, मेरे पास है जो चमत्कार है, तुम्हारे पास तुम कुछ कर सकते हो, कुछ चमत्कार दिखा सकते हो? तो ये जो अपना ब्रह्मा कुमार था उसने कहा, भाई देखो हम परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, आपको अच्छा लगे आप सुनो, कोई जबरदस्ती की बात थोड़ी है। तो उसको तो कहता नहीं, वो क्योंकि वो तांत्रिक था, अपने चमत्कार पर उसका अभिमान, कहा देखो मैं क्या कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, तुम्हें भी अभी अभी तुम्हें कुछ भी बना सकता हूं, ऐसे बोलने लगा, तुम्हें अभी भी कुछ भी बना सकता हूं। तो वो तो अपना बीके भाई पहले डरा, ये कौन आ गया आज, किसके पल्ले में पड़ गया। फिर उसको याद आया कि बाबा ने कहा है ना कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान के समान में रहोगे तो संसार की किसी भी मायावी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात उसको याद आ गया। तो उसने कहा अच्छा, आपको बहुत अहंकार है ना अपने चमत्कार के ऊपर, अपने रिद्धि सिद्धि के ऊपर, तो जो कुछ करना है वो करो, मैं बैठा हूं। अब क्या हुआ, उसको तो और अंदर में आ गया, इसकी चुनौती दे रहा है। तो वो भी तंत्र मंत्र करने वाले अपने इष्ट को है ना, पहले ध्यान करते हैं फिर किसी के ऊपर डालते हैं। जब उसके ऊपर मंत्र कुछ करने लगा तो ये योगी जो बीके था, बीके के स्वरूप में उसको अपना इष्ट दिखाई पड़ने लगा। अब वो इस समान में बैठ गया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान से कंबाइंड। तो वो क्या देख रहा है कि यही हमारा इष्ट है। तो वो इसके चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, भाई आप क्या करते हैं। तो ये ज्ञान सुनाया और वो भी बीके बन गया छोड़ करके ये भी बीके बन गया। तो कहने का भाव ये है कि कितना बड़ा ये समान जो है कि किसी ऐसे तांत्रिक जो जिनके अंदर इतना अभिमान, उसको भी परिवर्तन कर सकता है। तो सारी शक्तियां हमारे आगे अधीन रहेगी। तो रोज की मुरली से इस प्रकार से हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और लिख लेते हैं तो वो हमारा अपना बन जाता है, फिर वो जीवन में कभी भूलता नहीं है, वो सदा सदा के लिए अपना बन जाता है। और लास्ट में कई बार हम कहते हैं हाँ आजकल मुरली तो व्हाट्सएप पे, वैसे भाई अभी लॉकडाउन है, मना किया गया है, तो जब मना किया गया तो उसकी बात मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन वैसे बाबा की श्रीमत क्या है, मुरली कहां सुनना, सेंटर पर। तो कई बार हम चलो अच्छा अभी व्हाट्सएप पे सुन लेते हैं, है ना, ईमेल पर आता है, इंटरनेट आदि, मुरली पढ़ लेते हैं, बाबा की तो यही आ गया ना भाई, मुरली मिस नहीं करो, हम मुरली पढ़ लेते हैं। कोई सेंटर पर जाना जरूरी है, जाना जरूरी है या नहीं? देखो जो सेंटर पर जाकर के मुरली सुनते हैं वो कितनी बड़ी सेवा करते हैं, कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनते हैं, वो आप प्रैक्टिकल घटना सुनोगे। आप सभी जानते होंगे एक हमारा देश विदेश हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, तो रसिया की बहन संतोष बहन वो सुना रही थी कि हमारे सेंटर की बात है, हमारे यहाँ हमारे सेंटर पर ही वहां के गवर्नमेंट ने कुछ सीआईडी भेजे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, आखिर ये क्या सिखाते हैं, जाओ देख करके आओ। तो वो लोग आए और आकर के सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी सेंटर का क्या क्या नियम होता है, हा? मुरली क्लास में आने के पहले क्या नियम होता है? हाँ, पहले ये नियम होता है कि आप कोर्स करिए। तो उसने अब उसका कोर्स करने का क्या उद्देश्य था कि मैं अंदर एंट्री करूं और देखूं कि यहां क्या सुनाया जाता है। तो आया वो और नेचुरली अच्छी बात तो अच्छा ही लगेगा। तो वो जाकर के अपने गवर्नमेंट को बताते, भाई ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो बहुत ऊंची बात बताया जाता है, चरित्र निर्माण की बातें, ज्ञान की बातें। तो कहा अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहा हेडक्वार्टर तो माउंट आबू इंडिया में है, भारत में है। तो कहा भारत जाओ। तो वो ज्ञान सरोवर आए, वो सीआईडी लोग अपने गुप्त रूप में भारत आए, यहाँ के पीस ऑफ माइंड रिट्रीट अटेंड किए, ज्ञान सरोवर देखा, पांडव भवन देखा, शांति वन देखा। फिर कुछ समय तक वो वहां पर रसिया देश में सेंटर पर भी गए। सब कुछ देखने के बाद जाकर अपने गवर्नमेंट को सारा रिजल्ट देते हैं। तो रिपोर्ट में क्या बताया, क्या बताया होगा, आप क्या सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, सारे विश्व में है, इसका क्या राज बताया होगा उन लोगों ने? पवित्रता, और भी कुछ? अच्छा, क्या बताया? अच्छा, आपने सुना है कहानी क्या? अच्छी बात बताया आपने। तो उसने यही बात बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो रोज मुरली होती है ना, सुबह सुबह का संगठन होता है, उसका ही चमत्कार है। उसमें इतना उनको शक्ति आती है, इतना ताकत मिल जाती है, हा? कि बिल्कुल चार्ज उनको कोई कुछ भी बतावे कहे तो उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस वो अपनी मुरली में मस्त रहते हैं और उनके अंदर जो दिव्यता आई, अलौकिकता आई, रूहानियत आई, ये मुरली की चमत्कार है। तो देखो, जो रोज मुरली संगठन में सुनते हैं उसी आधार से तो सेवा हुई। अगर हम व्यक्तिगत सुनते तो होती इसी सेवा, संगठन देखा ना, तो संगठन में जाना ये बहुत बहुत बड़ी, हम अपनी तो सेवा करते हैं लेकिन अनेकों के सेवा करने के निमित्त बन जाते हैं, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा। तो जैसे आपको बताया, ऐसे आप मुरली मंथन करेंगे, मुरली की पॉइंट्स लिखेंगे, तो आप देखेंगे आपका योग बहुत सहज हो जाएगा और ज्ञान का चिंतन जब बढ़ेगा तो दूसरों को भी सुनाने की बहुत इच्छा करेगी। तो आप सदा ज्ञान योग में आगे बढ़ते रहें और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहें। ओम शांति। तो अभी हम, थैंक यू।